जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वरदारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वरदारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय जय
भगवान की जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी की शशि गौर निताय की श्री प्रभुपाद की
जय
निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्तं बस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदात्मकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं नमः श्रीरूपं सद्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदानंद श्रीवास गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज परम पवित्र दिन है। आज इफेक्ट बंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज कामदा एकादशी तिथि है। एकादशी को हमारे शास्त्र में माधव तिथि कहा जाता है और हरिवात्सर भी कहा जाता है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ठाकुर भक्ति विनोद अपने भजन में कहते हैं कि यह माधव तिथि यह एकादशी व्रत सभी प्रकार का यत्न करके परिश्रम करके यह एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसे हरिवात्सर भी कहा जाता है। हरिवात्सर का अर्थ होता है हरि का दिन। यह एकादशी भगवान का दिन माना जाता है। आज के दिन यदि कोई इस व्रत का पालन करता है तो निश्चित रूप से उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और इस भौतिक जगत में ही मैं भी बहुत बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे आज कामदा एकादशी है। दा का अर्थ होता है देना, प्रदान करना, और काम का अर्थ होता है इच्छा। आज के दिन यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो अपनी इच्छा पूर्ण हो सकती है। जो भी इच्छा है भगवान वह इच्छा पूर्ण कर देते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। तो आज के दिन हम एकादशी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। कितने लोग एकादशी नहीं रहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करके सभी व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करे। भगवान को प्रसन्न करना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो विधि विधान शास्त्र में दिए गए हैं उस विधि विधान का पालन करना बहुत आवश्यक। इस संसार में प्रायः कुछ लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए संसार के लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने मन के अनुसार मन घड़त कुछ वस्तु को लेकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान क्या चाहते हैं यह हमें देखना होगा। और सबसे पहले तो यह जानना होगा कि भगवान को प्रसन्न क्यों करना है। आप लोग कह सकते हो कि भगवान को प्रसन्न क्यों करना है, तो आइए सबसे पहले यह देखें। भगवान को प्रसन्न इसलिए करना है क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, प्रायः सब लोग जानते हैं। और उससे भी यदि हमारी विस्तृत रूप में पहचान दी जाए तो जीवेर स्वरूप होई नित्य कृष्ण दास। यह जीव भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, नौकर है, और भगवान स्वामी। तो आप देखिए इस संसार में जो सेवक है उसे यदि सुखी होना है, सेवक को सुखी होना है तो अपने मालिक को सुखी करना होगा। सेवक यदि अपने मालिक को प्रसन्न करता है तो निश्चित रूप से मालिक अपने सेवक को प्रसन्न करता है। सेवक को स्वयं प्रसन्न होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सेवक को यदि प्रसन्न होना हो तो अपने मालिक की सेवा करे। यदि अपने मालिक की वह सेवा करता है तो निश्चित रूप से वह मालिक अपने सेवक को प्रसन्न करेगा ही। यदि सेवक स्वयं अपनी सेवा करने लगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, वह प्रसन्न नहीं हो पाएगा। सेवक को चाहिए कि अपने मालिक की ठीक तरीके से सेवा करे। इस जगत में भी हम देखते हैं, एक सेवक अपने मालिक के वहां काम करता है तो महीने के बाद मालिक उसे तनख्वाह देते हैं, दिवाली में बोनस देते हैं और न जाने बहुत कुछ देते हैं। यह भौतिक जगत के मालिक सेवक को इतना प्रसन्न करते हैं तो जो मालिक के भी मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ के मालिक की यदि सेवा की जाए तो वे क्यों हमें नहीं प्रसन्न करेंगे। वास्तव में हमारे असली मालिक, सही मालिक तो भगवान श्री कृष्ण है और हम या आत्मा कृष्ण का सेवक है, दास है। इसलिए यदि आत्म सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, सच्ची प्रसन्नता चाहिए तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा को छोड़कर हम और कितना भी प्रयास करेंगे सुखी होने का, प्रसन्न होने का, हम नहीं हो पाएंगे। यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमें प्रसन्न करते ही। तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए यदि सुखी होना है तो। तो भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कह रहा था कि लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ये करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, शास्त्र में नहीं देखते हैं। जैसे कि संसार में कई लोग यह जान गए हैं कि भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने से हम प्रसन्न होंगे, हम सुखी होंगे, परंतु अपनी बुद्धि लगाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोमवार रहते हैं, मंगलवार रहते हैं, बुधवार रहते हैं, गुरुवार रहते हैं, न जाने अलग अलग तपस्या, अलग अलग व्रत अपने मन गणन ढंग से बना लेते हैं, परंतु अपने मन से, मन गणन विधि से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। अक्सर मैं दृष्टांत देता हूं कि मान लीजिए कोई बहुत प्यासा व्यक्ति यहां पर आए और आकर कहे कि मैं एक महीने से प्यासा हूं, मुझे पानी दो। हम में बहुत भाव आ जाए, बहुत प्रेम उमड़ने लगे और हम उसे पानी के बदले घी दे दे, घी का घड़ा भर कर दे दे, तो क्या वो उसकी प्यास बुझ जाएगी? आप कह सकते हो पानी से घी महंगा है, इतना महंगा घी देने के बाद भी क्यों उसकी प्यास नहीं बुझेगी? उसे, उसने पानी मांगा है तो पानी ही देना चाहिए, पानी देकर ही उसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान जो मांगते हैं, भगवान जो इच्छा करते हैं वह हमें देना चाहिए। हम हमारी बुद्धि से भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हमारी बुद्धि भगवान के कार्यकलापों को नहीं पकड़ सकती। तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा है हमें यह देखना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि मुझे प्रसन्न करना है, यदि शुद्ध भक्ति चाहिए तो एकादशी व्रत का पालन कीजिए। एकादशी व्रत का पालन करने से मैं प्रसन्न होता हूं और मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, बहुत पहले युग की यह बात है। ब्रह्मा जी भगवान के सर्वप्रथम जीव है। ब्रह्मा जी के हाथ में आप देखे होंगे वेद का किताब है, वेद है, माला है इत्यादि। तो एक बार ब्रह्मा जी को नींद आ गई, ब्रह्मा जी को नींद आई तो उस वक्त शंकासुर नाम का असुर ब्रह्मा जी को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा जी के हाथ से वेदों को चुराकर भाग गया। उसे वेद को पढ़ना नहीं था, बस ऐसे ही भक्तों को परेशान करना यह असुर का स्वभाव होता है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति भक्तों को परेशान करता है वे असुर ही है। भले दिख रहा है मनुष्य के रूप में, मनुष्य की तरह पैंट शर्ट पहनता है या साड़ी पहनता है इत्यादि, परंतु भक्ति में बाधा देने वाला तत्व, बाधा देने वाला व्यक्ति असुर ही है, क्योंकि यह असुर का ही कार्य होता है। प्रहलाद महाराज के प्रसंग में देखेंगे, प्रहलाद महाराज को भक्ति में बाधा देने वाला कौन था? कौन? हिरण्यकश्यपु। कौन था वह? असुर। और यहां पर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद लेकर भाग गया। उसे संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता होगा, परंतु बस भक्तों को परेशान करना है। वास्तव में भक्तों को जो परेशान करते हैं भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। इस लीला से हम देखेंगे, जब वह शंखासुर नाम का असुर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद लेकर भागा और समुद्र के तट में जाकर छिपा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए न जाने भगवान क्या कुछ नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी के उस वेद की रक्षा करने के लिए भगवान ने हयग्रीव नामक अवतार लिया। हयग्रीव का अर्थ होता है घोड़ा। भगवान ने घोड़े का रूप लिया। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कभी घोड़ा बनते हैं तो कभी सुअर भी बन जाते हैं, और कभी कभी तो नरसिंह भी बन जाते हैं, आधा नर और आधा प्राणी। निश्चित रूप से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, परंतु भक्तों को परेशान करने वाले को भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। वहां हिरण्यकश्यपु का वध किया और यहां पर हयग्रीव अवतार लेकर भगवान इस शंखासुर नाम के असुर का वध किया। और शंखासुर के पास जो वेद था भगवान ने लेकर ब्रह्मा जी को वापस लौटा दिया। ब्रह्मा जी के पास वेद वापस आ गया, परंतु उस शंखासुर नाम के असुर का एक पुत्र था जिसका नाम था मूर। मूर को पता चला कि विष्णु ने मेरे पिता का वध किया है। जिस दिन मूर को पता चला उस दिन मूर का सबसे बड़ा शत्रु विष्णु को मानने लगा, और विष्णु को मारने के लिए मूर नाम के असुर ने बहुत बहुत योजना बनाई। यह मूर असुर जानता था कि विष्णु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, विष्णु को मारने के लिए बहुत बल और शक्ति चाहिए, और बल और शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी देवता से वरदान लेना होगा। तो मूर ने सोचा ऐसे कौन से देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मूर को पता था कि पीछे जो बैठे हैं शिव जी भोलेनाथ बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मूर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ तामसी यज्ञ किया, और तामसी यज्ञ करने पर शिव जी तुरंत प्रकट हुए। शिव जी ने सोचा कि ये यज्ञ में इतनी इतनी बलि दे रहा है, न जाने कितने पशुओं का वध कर रहा है, चलो जाकर प्रसन्न प्रकट हो जाऊं ताकि ये वध करना तो बंद करे। शिव जी प्रकट हुए और कहा बोलो क्या चाहिए। मूर ने कहा कि मुझे वरदान दो कि इस संसार का सबसे बड़ा शक्तिवान मनुष्य बन जाओ। शिव जी ने कहा तथास्तु। शिव जी वहां से गए और मूर बहुत बड़ा बलवान असुर बना, और बलवान असुर बनकर सबसे पहले इस पृथ्वी में जितने भी भजन इत्यादि साधन होते थे भजन के सभी साधन बंद करवा दिए। पृथ्वी में सभी भजन के साधन बंद करवाकर स्वर्ग लोक में गया, और स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र का आसन खाली करवाकर इंद्र के साथ युद्ध किया। इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्र को युद्ध में हरा दिया। इंद्र को स्वर्ग, इंद्र और इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से भगाकर वे स्वयं स्वर्ग में राज करने लगा। जब सभी देवी देवता इस प्रकार से वहां से भागे, तब सारे देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में आए। ये देवी देवता भी जब दुखी होते हैं, देवी देवताओं के ऊपर जब आपत्ति आती है, तब वे भगवान विष्णु के शरण में आते हैं। तो देवी देवतागण भगवान विष्णु के शरण में आए और भगवान को कहा कि यह मूर जो है, यह असुर बहुत बलशाली है, हमारे साथ युद्ध करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है, तो कृपया करके आप हमारे साथ चलो और उसे मूर को मारो। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवतागणों, फिलहाल वर्तमान में तुम्हारा बहुत बेकार समय चल रहा है, इसलिए अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, समय आएगा तब मैं आपके साथ आकर मूर के साथ युद्ध करूंगा। इस प्रकार 100 साल बीतने के बाद भगवान श्री विष्णु देवताओं के पास गए और देवताओं के पास जाकर मूर के साथ युद्ध करने के लिए प्रारंभ हुआ। मूर नाम का असुर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए आया। यहां से इंद्र समेत, भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवतागण मूर के साथ युद्ध करने के लिए चले। बहुत धमाधार युद्ध हुआ और यह युद्ध 100 वर्षों तक चला, 100 साल तक युद्ध चला, लेकिन फिर भी मूर नहीं मरा। भगवान की भी अजीब लीला है, भगवान चाहते तो 1 सेकंड में मार सकते थे, परंतु भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते हैं। भगवान 100 साल तक मूर के साथ युद्ध किए लेकिन फिर भी नहीं मरा। इंद्र ने कहा प्रभु को कि प्रभु आप अपनी लीला बंद करो और जल्दी इस मूर को मारो, हमारे देवतागण एक के बाद एक मर रहे हैं। इंद्र के कहने पर भगवान युद्ध करते करते उस रणभूमि से भाग गए। मूर के साथ युद्ध करते करते भगवान रणभूमि से भागे। यह मूर नाम का जो असुर था बहुत क्रोधित हुआ और भगवान को गाली देने लगा कि कायर की तरह तुम भाग रहे हो, रणभूमि को छोड़ना यह कायरों का काम। मूर तो कहने लगा ये साला डर के भाग गया, लेकिन फिर भी क्रोध था इसलिए भगवान के पीछे पीछे मूर भागा भगवान को मारने के लिए। भगवान श्री विष्णु आगे भाग रहे हैं, मूर पीछे और मूर की सेना उसके पीछे, ये सब लोग को भगवान भगा रहे हैं। भगवान बहुत दौड़ाए, बहुत भगाए, बहुत भगाए, भगाते 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 भगवान दौड़ते दौड़ते एक गुफा में जाकर छिप गए। ये मूर बेचारा दौड़ता दौड़ता अपनी सेना को लेकर उस गुफा के पास पहुंचा, पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था और गुफा के बाहर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है कि अरे कायर, मेरे डर से छिप गया, बाहर निकल। परंतु भगवान ने तो आवाज भी नहीं दी, बाहर भी नहीं निकले। जब मूर ने बहुत ललकारा, भगवान जब बाहर नहीं निकले तो मूर ही अंदर चला गया गुफा में जाकर। गुफा में जाकर मूर ने देखा तो भगवान आराम से सोए हुए हैं। भगवान का स्वभाव है सोना, कारण समुद्र में भी सोते रहते हैं, गर्भोदक सागर में भी सोते रहते हैं, शीर्षक सागर में भी सोते रहते हैं। भगवान का, भगवान विष्णु का आप जब भी फोटो देखेंगे तो सोए हुए ही नजर आएंगे। लेकिन भगवान का सोना भी अद्भुत है। यद्यपि भगवान के ऊपर बहुत बहुत भार है, ये एक ब्रह्मांड नहीं, ये एक पृथ्वी में जहां पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी से बड़े बड़े लोक 14 लोक है, यह 14 लोक मिलकर एक ब्रह्मांड होता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड चलाने का भार भगवान विष्णु पर है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का सर्जन करना, शिव जी का काम है सृष्टि का प्रलय करना, परंतु सृष्टि का चलाने का काम भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु के ऊपर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भार है, लेकिन फिर भी भगवान आराम से सोते हैं। सोते हुए ये सब चल रहा है और हम इतना मेहनत करने के बाद भी एक फैमिली का भी भरण पोषण ठीक से नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान सोते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं। तो ये भगवान का सोना, भगवान की आदत है सोने की, सोते रहते हैं। तो भगवान सोए हुए, भगवान को सोया हुआ देखकर ये मूर बहुत क्रोधित हुआ। इतना इतना दौड़कर हम यहां पर आए और ये साला सो रहा है। मूर बहुत क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर सोए हुए भगवान के ऊपर तलवार से वार करने गया। शास्त्र में ये वर्णन है कि सोए हुए के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम, जो मत है, जो मदिरा पिया है, जो नशे में है, उस पर कभी वार नहीं करना चाहिए। स्त्री के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए। बच्चे के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए। पागल मूर्ख के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए। जिसके पास शस्त्र नहीं है उस पर कभी वार नहीं करना चाहिए, और जो सोया हुआ है इस पर कभी वार नहीं करना चाहिए। यह छह लोगों के ऊपर जो वार करता है, जो हथियार चलाता है, वो बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है। मूर जानते हुए भी भगवान सो रहे थे तो भगवान के ऊपर तलवार से भगवान को जैसे मारने गया, तुरंत भगवान के शरीर से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई और कन्या प्रकट होकर मूर की जितनी भी सेना थी एक एक सेकंड में मूर की सारी सेना को मार डाला। और मूर की सेना को मारकर जैसे ही वह कन्या मूर को मारने जा रही थी, तुरंत मूर भगवान के शरण में गिरा। तुरंत भगवान की आंख खुली। मूर मरने ही वाला था परंतु भगवान की शरण में गया, और भगवान तो शरणागत वत्सल है। भगवान ने देखा कि ये मूर मेरी शरण में आया है। शरण में आया देखकर फिर भी भगवान का क्रोध कम नहीं हो रहा था। भगवान ने कहा कि तुम ये ब्रह्मांड छोड़कर चले जाओ। मूर ने कहा, ब्रह्मांड छोड़कर कहां जाऊंगा, मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, तुमने हमें, हमारे भक्तों को, देवी देवताओं को बहुत परेशान किया है, यदि जीवित रहना है तो यहां छोड़कर भाग जाओ। मूर ने कहा, किसी एक जगह पर तो स्थान दे दो ताकि मैं रह सकूं। मूर की बहुत बहुत अनुग्रह विनय करने के बाद भगवान ने मूर को स्थान दिया, स्थान का निर्देश किया। भगवान ने कहा कि आज की तिथि के दिन मैं तुम्हें अन्न में स्थान देता हूं, और उस दिन एकादशी, एकादश तिथि थी, इसलिए एकादशी के तिथि के दिन मूर का अन्न में वास होता है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो निश्चित रूप से उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में, उनके मन में मूर नामक असुर का वास होता है। ये दिखता नहीं है परंतु बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है। आसुरी वृत्ति, आसुरी स्वभाव एकादशी के दिन अन्न खाने से प्रकट होता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न वर्जित। ये हम अनुभव भी करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी हमें क्रोध हो जाता है। हम क्रोध कर देते हैं पत्नी के ऊपर या बच्चों के ऊपर या पति के ऊपर, परंतु क्रोध करने के बाद हमें ज्ञान आता है कि हमने क्रोध नहीं किया होता तो अच्छा था। हमारी बुद्धि कहती है कि यह नहीं करना चाहिए था, परंतु फिर भी मजबूरन हमको क्रोध लाकर दूसरे के ऊपर नुकसान कराने वाला कोई तत्व है तो वह है यह मूर। एकादशी के दिन अन्न खाने से इस प्रकार से हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि मूर नामक असुर हम में बैठ जाता है और हमसे गलत गलत कार्य, गलत गलत मन में विचार इत्यादि आते हैं। तो भगवान ने एकादशी के दिन मूर को अन्न में स्थान दिया। मूर तुरंत वहां से चला गया और भगवान ने जब उस कन्या को देखा, वास्तव में वह अद्भुत कन्या थी। जो कार्य भगवान ने नहीं किया वह कार्य उस कन्या ने कर दिया। भगवान से ही प्रकट हुई, कन्या ने वह कार्य किया। वास्तव में भगवान भी वह कार्य कर सकते हैं, परंतु भगवान अपने भक्त को यश देना चाहते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये सामने के पक्ष में खड़े हुए सभी योद्धाओं को मैंने मार डाला है। भगवान ने अपने विराट रूप में अर्जुन को दर्शन करवाया कि ये कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, ये सब कुछ मेरे मुंह में, ये काल के गाल में फंस गए हैं, जा रहे हैं, मरे हुए हैं, सबको मार डाला है, परंतु अर्जुन मैं तुम्हें यश देना चाहता हूं। मैं चाहूं तो एक झटके में सबको राख बना सकता हूं, परंतु मेरी इच्छा है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए यश लभस्व। अर्जुन उठो और यश लभस्व, यश प्राप्त करो, केवल तुम्हें यश लेना है। भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा है कि भगवान से जो कन्या प्रकट हुई उसे यश मिले। भगवान ने पूछा, पुराणों में वर्णन है, भगवान ने उसे पूछा कि आप कौन हो। तो उस कन्या ने उत्तर दिया कि मैं एक दासी हूं। क्या कहा? मैं एक दासी हूं। तो कन्या के इस प्रकार से कहने पर भगवान ने कहा, ठीक है, आपने अपने मुख से पहला शब्द यह कहा, इसलिए आपका नाम एकादशी में रखता हूं। मैं एक दासी हूं, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एकादशी तिथि के दिन भगवान से उस कन्या का प्राकट्य हुआ था, इसलिए उस कन्या का नाम एकादशी रखा गया। एन केन प्रकारण उस कन्या का नाम एकादशी हुआ। और एकादशी को भगवान ने कहा कि तुमने मेरा बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि न भूतो न भविष्यति। आज तक किसी ने भी किसी को ऐसा वरदान नहीं दिया है, और न तो भविष्य में आज के बाद ऐसा वरदान कोई किसी को देगा। भगवान ने एकादशी को कहा कि यदि कोई व्यक्ति आज के दिन एकादशी व्रत का पालन करता है, एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। एकादशी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। भगवान ने यह वरदान एकादशी को दिया। तो इस प्रकार एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति अन्न नहीं खाता है, उपवास रखता है, तो भगवान की वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। एकादशी दो प्रकार की होती है, एक स्मार्तक एकादशी और एक वैष्णव एकादशी। सब लोग कंफ्यूज होंगे इस बात से कि कभी कभी हमारे इस्कॉन में एकादशी होती है, परंतु हम जो हमारे भारत के कैलेंडर में देखते हैं तो उसके अगले दिन एकादशी होती है, और प्रायः ये जो स्मार्तक एकादशी होती है उसके बाद वाले दिन ही हमारे इस्कॉन और वैष्णव एकादशी होती है। तो स्मार्तक एकादशी और वैष्णव एकादशी में थोड़ा अंतर है। स्मार्तक एकादशी व्रत का यदि कोई पालन करता है तो उसे भौतिक यश, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, परंतु वैष्णव एकादशी व्रत का यदि कोई पालन करता है तो उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और इस संसार में भौतिक यश धन से कई गुना बेटर है भगवान की शुद्ध भक्ति, क्योंकि इस संसार में कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ, इस संसार में कितना भी धन मिल जाए, कितना भी गहना सोना मिल जाए, परंतु जब तक इस संसार को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में हम नहीं जाते हैं तब तक हम वास्तविक सुखी नहीं हो सकते। प्रायः संसार में कई सारे लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं, परंतु यह सब ये सारे सुख बहुत तुच्छ सुख है, और इस तुच्छ सुख के लिए जो निरंतर नित्य सुख है उस नित्य सुख को त्याग देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक दृष्टांत दूं, एक जेल है और उस जेल में उम्र कैद की सजा कैदी लोग भोगत रहे हैं, और उस उम्र कैद की सजा भोगत रहे हुए कैदी पूरे जीवन भर वहां पर उसे सजा भोगत नहीं है। एक दिन उस जेल के 100 साल पूर्ण हुए, 100 साल पूरे होने पर इस देश का वड़ा प्रधान बहुत प्रसन्न हुआ कि ये जेल के 100 साल पूर्ण हुए, तो आज के दिन मैं उस जेल में जाऊंगा और उस जेल में जितने भी कैदी हैं उसकी सभी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। प्राइम मिनिस्टर उस जेल में गए, बहुत ही बड़ा मंडप, बहुत बड़ा आयोजन किया गया और सभी कैदियों को लाइन में खड़ा रखा गया, सभी कैदियों को लाइन में खड़ा रखा गया। प्राइम मिनिस्टर करने लगे, एक के बाद एक आते गए। पहले व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपकी क्या इच्छा है, मैं यहां पर आया हूं इच्छा पूरी करने के लिए, आपकी क्या इच्छा है। तो उस पहले उम्र कैद की सजा भोगतने वाले पहले कैदी ने कहा कि मेरी इच्छा है यहां जेल में कितने दिनों से बहुत मच्छर काट रहे हैं, तो ये मच्छर न काटे, इस मच्छर का कुछ इंतजाम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो बड़ा प्रधान ने कहा ठीक है, इसकी इच्छा को पूरी कर दो, इसको ऐसी जगह पे रखो ताकि मच्छर ना काटे। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति को बड़ा प्रधान ने पूछा आपको क्या चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यहां जेल में काम करने पर बहुत कम पैसे मिलते हैं, यदि मुझे पैसे मिल जाए कुछ 4-5 लाख या 1 करोड़ रुपया मिल जाए। बड़ा प्रधान ने कहा कितना चाहिए बोलो, उसने कहा 1 करोड़ रुपया दे दो। बड़ा प्रधान ने साइन करके दे दिया, जाओ इसको 1 करोड़ रुपया दे दो। तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे व्यक्ति को पूछा आपको क्या चाहिए। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि यहां पर जेल में खिचड़ी खा खा कर थक गया, कुछ अच्छा भोजन की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा होता। बड़ा प्रधान ने कहा कि इसको कल से अच्छा अच्छा जो चाहिए वो भोजन खिलाओ। इस प्रकार से 3 व्यक्ति गुजरे, चौथा व्यक्ति आया। चौथा व्यक्ति को पूछा बड़ा प्रधान ने आपको क्या चाहिए। चौथे व्यक्ति ने कहा मुझे जो चाहिए वो आप दे दोगे। बड़ा प्रधान ने कहा इसलिए तो मैं यहां पर आया हूं। चौथे व्यक्ति ने कहा कि यदि आपको मुझे कुछ देना है तो एक काम करो, मुझे इस जेल से ही बाहर निकाल दो, तब आप ही बताओ इस 4 व्यक्ति में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, पैसा मांगने वाला, भोजन मांगने वाला, कौन सा? चौथा व्यक्ति। भोजन मांगने वाला बुद्धिमान नहीं है या धन मांगने वाला बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो वड़ा प्रधान से कहता है कि मुझे इस जेल से बाहर निकालो। जब तक व्यक्ति उस जेल में है तब तक उस व्यक्ति के पास कितना भी धन मिल जाए व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति जेल में है तब तक उसको कितना भी अच्छा पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, कितना भी अच्छा बंगला घर मिल जाए, जब तक वह जेल में है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार हम सब लोग इस संसार में, यह भौतिक संसार रूपी जेल में बंधे हुए हैं। भगवान ने यह पृथ्वी एक जेल के रूप में बनाई है। जब तक इस पृथ्वी में, इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, इस भौतिक जगत में रहकर कितना भी धन मिल जाए व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। कितना भी सुंदर भोजन मिल जाए, कितना भी धन, गहना, सोना मिल जाए, डायमंड, हीरे मिल जाए, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास नहीं जाता है। इस संसार में वास्तविक दुख क्या है? इस संसार में वास्तविक दुख यह है कि हम इस संसार में रह रहे हैं, परंतु मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते हैं और इसी संसार में रहकर छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, धन मिल जाए। पूरा जीवन बीत जाता है धन कमाने में, लेकिन फिर भी उसकी धन से आसक्ति नहीं जाती। और पता है ऐसे लोग अपने पुत्र को भी यही सिखाते हैं, बेटे तुम्हें मेरी तरह बिजनेस करना है, मेरी तरह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। प्राय संसार में देखा गया है, एक बालक एक लड़का जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो पिताजी अपने पुत्र को कहते हैं कि मेरी तरह बिजनेस करना है, मैंने जिस प्रकार ऑफिस में काम किया है, ईमानदारी से बिजनेस किया है, वैसे तुम्हें करना है। परंतु बुद्धिमान लड़का अपने पिता को कहेगा, पिताजी आपकी 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल आपने बिजनेस किया, 60 साल तक बिजनेस करने के बाद आप सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए? पिताजी आप 60 साल तक यह बिजनेस करने से सुखी नहीं हुए तो मैं कैसे हो सकता हूं? बुद्धिमान लोग इस बात पर विचार करते हैं और मूर्ख लोग बिना विचार के अमल करते हैं। तो मैं यह कह रहा था, जब तक इस भौतिक जगत में हम पड़े हुए हैं, ये भौतिक जगत रूपी जेल में है, तब तक कुछ भी मिल जाए हमें, हम सुखी नहीं हो सकते। इस संसार में एक बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया जिसका नाम था सिकंदर। ये सिकंदर प्राय इस दुनिया को जीत लिया था, 80% 80% इस दुनिया को जीत लिया। परंतु 80% दुनिया को जीतने के बाद पता चला कि उसे कैंसर का रोग है। तुरंत अपने देश में वापस गया और कुछ दिन के बाद वो मर गया। इस पूरी दुनिया को जीतने का क्या लाभ हुआ उसे? और सिकंदर अब जीते जीतो कुछ नहीं समझ सका, परंतु मरते वक्त एक अंतिम उपदेश देकर गया। मरते वक्त उन्होंने अपने सिपाही को कहा कि जब मैं मरूंगा और आप मुझे दफनाएंगे जमीन में, तो मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, मेरे दोनों हाथ ऊपर रख के मुझे जमीन में दफनाना, ताकि इस संसार के लोग समझ सके। मैं तो मेरे जीवन में नहीं समझा, मैं मेरे जीवन में इस बात को नहीं समझा, परंतु संसार के लोग मेरे मुझे देखकर समझ ले कि सिकंदर जब आया था तब दोनों हाथ खाली थे और सिकंदर जब जा रहा है तब दोनों हाथ खाली है। यद्यपि पूरी दुनिया उसके झंडे के नीचे थी, परंतु क्या लेकर गया? इसलिए कवि ने कहा है, इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। व्यक्ति जब संसार में आता है तब कुछ नहीं लेकर आता है, जाता है तो कुछ नहीं लेकर जाता है, तो फिर क्यों इस प्रकार से गधे की तरह मेहनत करके फजीहत में पड़ा है? लोग बस जुटाने में पड़े हैं, लाखों करोड़ों हमारे पास होने चाहिए। यद्यपि करोड़ों रुपये हो भी जाए फिर भी वो उसका भोग नहीं कर सकता है। यदि एक व्यक्ति 1000 रुपया कमा रहा है और अचानक वो करोड़ रुपया कमाने लगा, तो वो जितना खा रहा है उतना ही खाएगा। 5 रोटी वो खा रहा है, 1000 रुपया कमा रहा है और 5 रोटी खा रहा है, 1 करोड़ कमाने के बाद वो 5 ही रोटी खाएगा। और एक पैंट और शर्ट पहनता है और करोड़ रुपया कमाने के बाद एक शर्ट और एक ही पैंट पहनेगा, 10-10 शर्ट नहीं पहनेगा। अब खाना उतना है, पहनना उतना है, सब कुछ रहना करना सब कुछ उतना ही है, तो फिर क्यों इतना एकत्रित करके? और जो धन कमाते हैं वो अपने जेब में भी नहीं रखते हैं। मान लीजिए जो करोड़ों पति हैं, तो वो करोड़ों रुपए अपनी जेब में रखकर नहीं घूमते हैं, वो कहीं बैंक में पड़ा होता है या आंगड़िया में पड़ा होता है। बस केवल मन से यह सोचते हैं कि हमारे बैंक में या हमारे आंगड़िया में करोड़ों रुपए पड़े हैं। नहीं तो वो यूज कर सकता है, न तो उसका इस्तेमाल कर सकता है, न तो वो खा सकता है, और उसमें भी डायबिटीज हो गई तो फिर तो वो तो गया काम से। तो केवल मन में यह सोचना है कि मेरे बैंक में इतने पड़े हैं करके मर जाएगा। यदि मन में यह सोचकर ही जीवन जीना है तो सोच लो, हम अरबों पति हैं, ये पूरे भारत के हम ही मालिक हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो मन में सोचकर ही सुखी होता है, जेब में लेकर तो धीरूभाई अंबानी का लड़का जेब में करोड़ों रुपया लेकर नहीं घूमता है। बस उसके मन में है कि बैंक में इतने पड़े हैं, वो पड़े ही रह जाएंगे, वो चला जाएगा। तो मन में यह है कि मेरे बैंक में इतने पड़े हैं, तो फिर मन में सोचिए पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, ये सब कुछ हमारे ही नाम पे है, और बिंदास रहिए। खाने में कितना, दो रोटी चाहिए, सोने के लिए एक खटिया चाहिए और पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन बिल्कुल फजीहत में गधे की तरह मेहनत, लोग इस पर विचार नहीं करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है। भयं विषय विराग और भवत बसत्वा चौथपन, चौथापन आ जाता है, लेकिन फिर भी जीवन से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। मृत्यु के बारे में कोई नहीं सोचता है, सोचता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे, हम अमेरिका जाएंगे, बहुत बहुत सोचते हैं, हमारे बच्चे के बच्चे बहुत पढ़े लिखे बड़े बड़े बनेंगे, परंतु जीवन में यह कभी नहीं सोचते हैं कि मृत्यु कभी आएगी तो मृत्यु के लिए कुछ उपाय कर लो। प्रभुपाद जी बहुत कड़े शब्दों में लिखे हैं कि व्यक्ति को कभी अच्छा पुत्र मिले या न मिले, एक व्यक्ति करोड़पति बने या न बने, एक व्यक्ति करोड़पति बने या न बने, परंतु उसके जीवन में मृत्यु निश्चित रूप से आएगी। जो चीज हमारे जीवन में आने वाली है उसके लिए हम कभी नहीं सोचते हैं, और जो जीवन में कभी नहीं होने वाले हैं उसके लिए हम बार बार दिन भर मेहनत करते रहते हैं। इसलिए यक्ष ने जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष को यही कहा, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। अहनी अहनी का अर्थ होता है हजारों 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 लोग, गच्छन्ति गच्छन्ति का अर्थ जाना, हजारों हजारों लोग जा रहे हैं कहां पर, हिमालयम यमराज के दरबार में। इस संसार का व्यक्ति देख रहा है कि हजारों हजारों लोग यमराज के दरबार में जा रहा है, हमसे जो बड़े बाप दादा हैं वे मर गए, हमसे छोटे भी एक्सीडेंट में मर रहे हैं, आजू बाजू सभी रहने वाले लोग मर रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात यह है, शेषा स्थावर न इच्छन्ति किम आश्रम मत परम। जो आश्चर्य की बात यह है कि मरने वाला व्यक्ति यह कभी नहीं सोचता है कि मैं कभी मरने वाला, बहुत आश्चर्य की बात। तो इस संसार में लोग वास्तविक काम को छोड़कर गलत काम में फंस जाते हैं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि इस पृथ्वी को छोड़कर, इस भौतिक संसार को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास जाए, और भगवान के पास व्यक्ति तब जा सकता है जब भगवान की भक्ति करे, और भक्ति करनी चाहिए, इसे बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने से भगवान के धाम में चले जाएंगे, जानते हैं परंतु करते नहीं है, उपदेश भी देते हैं परंतु जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस संसार में प्रायः सब लोग जानते हैं कि भक्ति करने से भगवान के धाम में जा सकते हैं, परंतु करना ये बहुत बड़ी बात है। एक बार एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था और ट्रेन बिल्कुल नजदीक आ गई, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा था व्यक्ति, और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रहने वाले ने कहा कि ट्रेन आ रही है, तो बोला मैं जानता हूं ट्रेन आ रही है, मैं जानता हूं, अरे ट्रेन नजदीक आ गई, मैं जानता हूं, तुरंत ट्रेन आ गई और मर गया। यही हालत हमारी है, हम कहते हैं भक्ति करनी चाहिए करनी चाहिए करनी चाहिए, बस उपदेश देते हैं, हम नहीं करते हैं। जानता हूं भक्ति करनी चाहिए, जानता हूं, अरे जानने से क्या हुआ, अरे पता है ट्रेन आ रही है तो तुरंत प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। जिस दिन से पता चला है कि भक्ति करने से भगवान के धाम में जा सकते हैं, उस दिन से भक्ति प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो भगवान के धाम में जाने के लिए मैं कह रहा था भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, और यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है कि यदि कोई एकादशी व्रत की महिमा नहीं भी जानता हो, एकादशी व्रत की महिमा नहीं जानने वाला भी अनजान में भी यदि एकादशी व्रत रहता है तो भी उसे एकादशी व्रत का पूरा पूरा फल मिलता है। जैसे शास्त्र में पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार एक बहुत बड़े राजा थे और राजा का एक पुत्र था। राजा का पुत्र राजकुंवर गलत संगति में फंस जाने के कारण वे बहुत गलत काम करने लगा, पाप करने लगा। जब देखा राजा ने कि मेरे इस पुत्र का आचरण बहुत बिगड़ गया है तो राजा ने अपने पुत्र को अपने राजमहल से बाहर निकल दिया। पुत्र भटकते हुए जंगल में चला गया और जंगल में जाकर रोज प्राणियों का शिकार करता था और शिकार करके प्राणियों का मांस खाते रहता था। प्राणियों का मांस खा खा कर वह राजा का वह पुत्र एक दिन बहुत बीमार हो गया। अब घर पे बीमार होते हैं तो हमारी सेवा करने वाले कुछ होते हैं, परंतु ये तो जंगल में इसकी सेवा करने वाला कोई नहीं और शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा सका। इस दिन इसलिए सुबह से लेकर शाम तक उसे भोजन नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह जब हुआ और उन्होंने उस लड़के ने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे राजमहल में वापस चले जाना चाहिए। तो घोड़े के ऊपर सवार होकर जब वे राजमहल में वापस जा रहा था, जैसे ही सुबह हुई भगवान के पार्षद भगवान के धाम से आए और उस व्यक्ति को लेकर उनके धाम में चले गए। तात्पर्य यही है कि उस दिन एकादशी तिथि थी और एकादशी तिथि के दिन न जानते, इसे नहीं पता था कि आज एकादशी है, ये तो मांसाहारी था, परंतु न जानते हुए भी एकादशी व्रत का पालन करने से ये भगवान को प्राप्त हो। एकादशी व्रत में बहुत, ये तो पुराणों की कथा है, मैं कुछ ही महीनों पहले की मैं आपको बात करता हूं। एक कमिश्नर हमारे इस्कॉन में ये बात बता रहे थे, अपना अनुभव बता रहे थे। पुलिस कमिश्नर, ये पुलिस कमिश्नर कह रहे थे कि एक बार मेरी ड्यूटी राजस्थान में शिफ्ट की गई और मुझे वहां पर कई चोरों को पकड़ना था। तो राजस्थान में मेरी ड्यूटी लगाई गई और मुझे एक बहुत पुराने बंगले में रखा गया जहां पर कई सालों से कोई नहीं रहता था। तो मैं उस सुबह उस बंगले में गया, जाकर रहने लगा। जब रात के दो बजे तो बहुत लोगों के हंसने की आवाज आई। ये कमिश्नर अपना अनुभव सुना रहे थे। तो मैं देखा कि इस बंगले में आजू बाजू में तो कोई है नहीं, बहुत बहुत हंसने की, कई लोगों के हंसने की आवाज आई। तो ये कमिश्नर, वहां तीन चार रूम थी उस बंगले में, तो एक रूम में जाकर देखे तो उस रूम से ही हंसने की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हंसने की आवाज तो आ रही थी परंतु कोई दिख नहीं रहा था। तो कमिश्नर होते हुए तो बहुत टेरिंग होता है उसमें, तो उसने वो बोल दिए हिंदी में कि तुम कौन हो। तो हिंदी में बोले तो आवाज आई उस कमरे से हंसते हंसते, कहे कि हम भूत हैं, हम बिना शरीर के, हम हमारी कमौत हुई है इसलिए हम बिना शरीर के भटक रहे हैं, हम भूत। तो इस कमिश्नर ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो, इतना क्यों हंस रहे हो। तो उस भूतों ने कहा कि कल हमारी संख्या बढ़ने वाली है, कल एक व्यक्ति हमारे ग्रुप में ज्वाइंट होने वाला है इसलिए हम खुश हो रहे हैं। कमिश्नर ने कहा वो कौन है, वो भाग्यवान व्यक्ति कौन है। उसने कहा कि एक दूल्हा है और विवाह के दिन ही उसकी मृत्यु होने वाली है, कमौत होएगी और हमारी टीम में वो शामिल होने वाले हैं। कमिश्नर वहां से निकले और दूसरे दिन उन्होंने पता लगाया कि किसका विवाह यहाँ पर है आजू बाजू में। कमिश्नर कैसे भी करके पता लगाकर उस विवाह में पहुंचे। विवाह में जाकर पता चला कि वह दूल्हा विवाह हो गया। विवाह होने के बाद शाम को जब बारात वापस जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। बेचारा घर पे नहीं पहुंचा, विवाह होने के बाद शाम को उसका एक्सीडेंट हो गया। कमिश्नर ने सोचा कि ये भूतों ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा। कमिश्नर आए घर पर, घर पर आए और रात को सोए, रात को सोए तो इस ये दूसरे दिन उस भूतों के रोने की आवाज आई। ये कमिश्नर तो आश्चर्यचकित हो गए, वो गए कमरे में और कमरे में जाकर जोर से बोलने लगे, आपको तो खुश होना चाहिए कि एक व्यक्ति आपके ग्रुप में ज्वाइंट हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? तो भूतों ने कहा कि वो हमारे ग्रुप में आने वाला था परंतु नहीं आया। कमिश्नर ने पूछा कि वो तो कमोद में मरा है, उसकी मृत्यु तो निश्चित नहीं थी, एक्सीडेंट हुआ है, और फिर भी आपके साथ क्यों नहीं आया? तो उस भूतों ने कहा कि ये राजस्थान के जो दूल्हा होते हैं, वे दूल्हा जब अपना विवाह होते हैं तो पूरा दिन उपवास रखते हैं। तो ये दूल्हा ने पूरा दिन उपवास रखा था और सौभाग्यवश उसी दिन एकादशी का व्रत था। पूरा दिन उपवास रखा और एकादशी व्रत था और शाम को उसकी मृत्यु हुई। तुरंत यहाँ पर नहीं आया, भूत योनि में नहीं आया, वो तो चतुर्भुज पार्षद होकर भगवान के धाम में चला गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस प्रकार एकादशी व्रत की बहुत बहुत महिमा है। इस संसार में और भी कई सारे व्रत हैं, परंतु ये सारे व्रत अपने मन धड़न अपनी बुद्धि से लोग बनाते हैं। किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि सोमवार रहना चाहिए, मंगलवार रहना चाहिए। बताइए कौन से शास्त्र में लिखा है? अपनी बुद्धि से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान जो कहते हैं उसका पालन करना चाहिए। किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है बुधवार रहो या गुरुवार रहो। ये तो पता है कैसे चला है, कुछ स्त्रिया को पूछा गया कि आप बुधवार क्यों रहती हो, तो कहती कि वो दो चार महिला रहती हैं इसलिए हम रहते हैं। उससे पूछा जाए आप क्यों, हमारे गांव में कुछ लोग रहते हैं, बस यही इसका तथ्य है, और कुछ इसका कोई गहराई नहीं है। बताइए कौन से शास्त्र में लिखा है यह सब बार रहना चाहिए, परंतु एकादशी रहना चाहिए यह सभी शास्त्रों में लिखा है। सभी शास्त्र कहते हैं कि यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो एकादशी रहिए। जैसे मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में कहा गया है, एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन निराहार, निराहार अर्थात अन्न ग्रहण नहीं करता है, यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास रखता है तो शुक्ले वा यदि वा कृष्णे ततः व्रतम वैष्णव महत। तो एकादशी रखने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का प्रिय हो जाता है, भगवान उसे प्रेम करते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है, एकादश्याम न भुंजित, भुंजित का अर्थ है खाना, भुंजान। एकादशी के दिन यदि कोई भोजन अन्न भोजन नहीं करता है, व्रतम एतद् वैष्णव, निश्चित रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु उसे अपने धाम में ले लेते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, माहिया पितृहाश्चैव भातृहा गुरुहा तथा एकादशांतु यो भुंक्ते विष्णु लोकाच्युतो भवे। यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है तो उसे इतना पाप लगता है, इतना पाप लगता है, जो व्यक्ति अपनी माता को मारकर, अपनी माता को मारने में जो पाप लगता है, अपने पिता को पितृहा हाकार तथा है मारना, अपने पिता को मारकर जितना पाप लगता है, अपने गुरु को मारकर जितना पाप लगता है, उतना पाप एकादशी व्रत नहीं रहने से पाप लगता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये स्कंद पुराण में कहा गया है, सभी शास्त्रों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, स केवल मदम भूंगते यो भूंगते हरिवासरे दिनेत्र सर्व पापानी भवंती अन्न स्थितानि। यदि एकादशी के दिन कोई अन्न भोजन करता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार तीनों लोक में नहीं हो सकता है। और बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्रणाश्चैव योषिताम मोक्षदम कुर्वता भक्त्या विष्णु प्रीतरम द्विजा। चाहे वो ब्राह्मण हो, चांडाल हो, वैष्णव हो, कैसा भी जाति पाति का व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है तो निश्चित रूप से वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार से सभी पुराणों में भगवान साक्षात अपने मुख से भीख मांगते हैं कि यदि आपको मुझे प्रसन्न करना है एकादशी व्रत का पालन करो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा यह सब कुछ सिखाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु एक बार अपनी माता को कहे, एक दिन मातार करी या प्रणाम। एक दिन चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक थे, सुबह उठकर अपनी माता के पास जाकर माता को दंडवत प्रणाम किए और माता को प्रणाम करके प्रभु कहे माता मोर दिल एक दान। चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को कह रहे हैं कि हे माता जी, आज मैं आपसे एक दान चाहता हूं। मां अपने पुत्र को कहने लगी, दान जो चाहिए वो मांग लो। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाए बे। हे माता, मैं आपसे आज एक दान मांग रहा हूं कि एकादशी के दिन तुम कभी अन्न मत खाना, एकादशी व्रत का पालन करना। चैतन्य महाप्रभु माता को नहीं, चैतन्य महाप्रभु हम सबको कह रहे हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए यदि मुझे प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करना है तो एकादशी के दिन अन्न वर्जित, अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किस प्रकार से उपवास करना चाहिए, एकादशी व्रत का यदि किसी को पालन करना है तो सबसे पहले एकादशी के दिन निर्जला उपवास करना चाहिए। निर्जला शास्त्र में तो यही विधान है, परंतु यदि निर्जला नहीं कर सकते हैं तो सजला उपवास करना चाहिए, और यदि सजला भी नहीं कर सकते हैं तो सफला करना चाहिए, फल खाकर यहां तक। और कुछ लोग यह भी नहीं कर सकते हैं, यदि सफला भी नहीं कर सकते हैं तो फिर अन्न मत खाइए, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन यह महात्म्य। परंतु यह सब क्यों है? कुछ लोग एकादशी के दिन निर्जला रहते हैं, परंतु निर्जला रहने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए टाइम पास करने के लिए टीवी देखते हैं। होता है कई लोग हमारे समाज में जागरण रखते हैं, माताएं व्रत रखती हैं, बहुत आश्चर्यमय बात है, जागरण रखते हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, परंतु जागरण में देखते हैं पिक्चर, फिल्म देखते हैं, जीवन में कभी फिल्म नहीं देखते हैं, परंतु जागरण है, जागना है, इसलिए टाइम पास करने के लिए पिक्चर देखते हैं। अब ये व्रत का, ये उपवास करने का क्या महिमा है बताइए? कुछ लोग एकादशी व्रत या पांडव एकादशी रखते हैं, भीम एकादशी, परंतु उस भीम एकादशी में टाइम पास करने के लिए क्रिकेट देखते हैं या कभी सिगरेट पी लेते हैं, मावा खा लेते हैं, क्या फायदा? एकादशी उपवास का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है निकट, नजदीक, और वास का अर्थ होता है रहना। उपवास का अर्थ होता है भगवान के निकट, ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट रहना। तो एकादशी उपवास का अर्थ होता है भगवान से निकट रहना। भगवान से निकट रहने के लिए यह अन्न भोजन बहुत बाधा देते हैं। ये जब यदि भोजन करते हैं तो नींद आती है, आलस आती है, इसलिए एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ कुछ लोग को एकादशी के दिन यदि भोजन नहीं करते हैं तो फिर नहीं रह सकते, तो कीजिए। परंतु तात्पर्य यही है, सिद्धांत यह है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ रहना चाहिए, फिल्म पिक्चर के साथ नहीं। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का जप सुनना करना चाहिए और भगवान के भक्तों का आसन करना चाहिए, इसे उपवास कहते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन निर्जला रहिए, सजला रहिए, या तो सफला या फल नहीं कुछ भी खा सकते हैं। आज तो एकादशी तो ऐसी हो गई है, और बाकी के दिनों में इतना व्यंजन, इतना भोजन, इतनी आइटम नहीं बनती हैं। एकादशी के दिन तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा आइटम बनाया जाता है, हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, आज तो एक फराली रोटी भी बनती है, रोटी बनती है, सब्जी बनती है, वड़ा बनता है, खीर बनती है। इसे चालू दिन में इतना भोजन नहीं होता है, एकादशी के दिन एकादशी फीस्ट करते हैं और कहते हैं हम उपवास रहते हैं। क्या उपवास? आपने देखा भगवान श्री रामचंद्र को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए मनु और शत्रुपा ने हजारों हजारों वर्ष तक बिना खाकर एक पैर पर खड़े रहकर ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या की। भागवत में वर्णन है 6000 वर्ष तक मनु और शत्रुपा पति पत्नी केवल पानी पीकर रहे, उसके बाद 10000 वर्ष तक पानी भी नहीं पिए, केवल हवा लेकर रहे। तब जाकर भगवान श्री रामचंद्र उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं भोग भोग कर। शास्त्र में कहा गया है नो पेन नो गेन, यदि कष्ट नहीं सहोगे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना होगा, रोना पड़ेगा, बिना रोए भगवान नहीं मिलेंगे। यहाँ तक भगवान की सर्वश्रेष्ठ गोपिया, सर्वश्रेष्ठ भक्त है गोपिया। भागवत में वर्णन है जब तक गोपियों ने एक स्वर से रुरुदु स्व स्वरम राजन, एक स्वर से गोपियों ने रोना प्रारंभ नहीं किया तब तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए। जब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों को, देवकी को, वसुदेव को, ये सबको रोना पड़ा है, तो हम कौन सी खेत की मूली है? हम भोग भोग कर भजन करना चाहेंगे, ये नहीं होगा। तपस्या करनी होगी, परंतु कलयुग में इतनी गहरी तपस्या भागवत में शास्त्र में नहीं है। कलयुग में केवल एक महीने में दो उपवास रहिए, ये बहुत बड़ी तपस्या है। एक साल में 12 महीने में 24 एकादशी और अधिक मास की दो 26 एकादशी व्रत का पालन कीजिए। भगवान कहते हैं उसे शुद्ध भक्ति में प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से सभी भक्तों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यही है आज के दिन की महिमा।